You are listening to Upanishads Simplified by Dr. Shisham Agarwal on the Red Podcast Network.
इस बात में कितनी सत्यता है, इस बात में कितना तथ्य है, और अभिमान हमें कैसे अंधा कर देता है, हमें कैसे ब्लाइंड कर देता है। आज हम केन उपनिषद से चर्चा करेंगे और केन उपनिषद से एक कहानी को सुनेंगे, एक वृतांत को सुनेंगे, जहां पर कैसे देवताओं को ईगो ने अंधा कर दिया, कैसे उनके अभिमान ने उनको अंधा कर दिया और कैसे ब्रह्म ने उनको वापस सम्मति दी और उनको अपने तम, अपने अभिमान के अंधकार से बाहर निकाला। अगर आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं, इस वृतांत को समझना चाहते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे आज के एपिसोड में, आपके फेवरेट पॉडकास्ट उपनिषद सिंप्लीफाइड में। मेरे साथ मैं हूं डॉक्टर शीशम अग्रवाल। मैंने 7 डॉक्टरेट्स करी हैं, ईशो उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद में मैंने डॉक्टरेट करी है। उपनिषद 108 है और इससे भी कहीं ज्यादा है, पर 108 डॉक्यूमेंटेड उपनिषद हमारे पास प्रस्तुत हैं और 10 प्रमुख उपनिषद हैं जिनको दशो उपनिषद भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने इन दशो उपनिषद के बारे में कहा है कि अगर आप केवल इन 10 उपनिषदों का अनुसरण कर लें तो आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर लेंगे और अपने अंदर से भी क्षण हो जाएंगे, अपने अंदर से भी कनेक्टेड हो जाएंगे, सेंटर्ड हो जाएंगे और रूटेड हो जाएंगे, मतलब आप अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे। और जब आप अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं तो आप जो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर लेते हैं और जीवन आपको ओतप्रोत भी नहीं कर पाता। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। एक बार देवता और दानवों में बहुत ही भीषण युद्ध हो रहा था और एक बार के लिए लगा कि दानव विजय न प्राप्त कर ले, परंतु ब्रह्म की कृपा से देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली और देवताओं में इतना हर्षोल्लास बढ़ गया कि उनके अंदर बहुत ज्यादा अभिमान आ गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है और उनसे ऊपर कोई भी नहीं। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारना शुरू कर दिया और ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे वो स्वयं ईश्वर ही हैं। तब ब्रह्म उनके सामने यक्ष के रूप में प्रस्तुत हुए और उन्होंने उनकी पावर को, उनकी अथॉरिटी को, उनके स्टेटस को ललकारा। तब इंद्रदेव ने सबसे पहले अग्निदेव को भेजा कि जाओ उस यक्ष से उसका परिचय लेकर आओ। तो अग्निदेव जैसे ही उस यक्ष के सामने गए तो यक्ष ने अग्निदेव से उनका परिचय मांग लिया। तो अग्निदेव ने कहा कि मैं वो हूँ जो सब कुछ जलाकर राख कर सकता हूँ, सब कुछ अपनी ओट में ले लेता हूँ और जो कुछ भी है मैं उसको कंज्यूम कर सकता हूँ, उसको अपने अंदर समाहित कर सकता हूँ। तो यक्ष ने बहुत ही सहज और भोले भाव से एक तिनका उनके सामने रख दिया कि इसको जलाकर दिखाइए, इसको अपनी ओट में लेकर दिखाइए। अग्निदेव जैसे मानो उस तिनके पे टूट ही पड़े और उनको ऐसा लगा कि ये तो केवल एक तिनका ही है। तो बहुत ही हास्यपूर्ण भाव से उन्होंने उस तिनके को जलाने का प्रयास किया, परंतु वो तिनका जला ही नहीं। धीरे धीरे अग्निदेव के ईगो को, अग्निदेव के अभिमान को क्षति पहुंचने लगी और उन्होंने उस तिनके को जलाने के लिए अपनी पूरी पावर एग्जर्ट कर दी, अपनी सारी शक्ति उस तिनके पर डाल दी, परंतु वो तिनका फिर भी नहीं जला। अग्निदेव ने इतना प्रयास किया कि उनका पूरा शरीर ड्रेन हो गया, उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, परंतु वो तिनका नहीं जल पाया। अग्निदेव दुखी होकर, परेशान होकर वापस लौट आए। तब इंद्रदेव ने वरुण देव को भेजा और बोला कि जाओ उस यक्ष का परिचय लेके आओ। जब वरुण देव वहां पहुंचे तो यक्ष ने उनसे ही पूछ लिया कि तुम्हारा परिचय क्या है। वरुण देव ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं उड़ा ना सकूं, अगर मैं चाहूं तो ये पूरा ब्रह्मांड मैं उड़ा सकता हूं। तो यक्ष ने उनके सामने भी वो तिनका रख दिया और कहा कि इस तिनके को उड़ा कर दिखा। वरुण देव ने थोड़ी शक्ति लगाई परंतु वो तिनका उड़ा ही नहीं। धीरे धीरे करके जब वरुण देव अपना बल बढ़ाते रहे और अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वो तिनका तब भी नहीं उड़ा। वरुण देव ओतप्रोत हो गए, बेचैन हो गए, अत्यंत व्याकुल हो गए और अपना पूरा बल लगाने लगे। काफी देर तक जब अपना पूरा बल लगा लिया और उनका शरीर भी ड्रेन हो गया और उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई और जब उन्होंने भी देखा कि ये तिनका नहीं उड़ रहा तो वो भी बहुत ही बेचैन हो गए, वो भी बहुत ही व्याकुल हो गए और शोकातुर होकर वहां से चले गए, परेशान होकर वहां से चले गए। और उन्होंने भी इंद्रदेव को बताया कि वो कुछ नहीं कर पाए। तब इंद्रदेव ने स्वयं ये निर्णय किया कि अब वो जाके उस यक्ष का परे चलेंगे। परंतु जब इंद्रदेव वहां पहुंचे तो उन्हें वो यक्ष वहां मिले ही नहीं, वहां उन्हें उमा देवी मिली और इंद्रदेव समझ गए कि इसके पीछे कुछ और ताकत है जिसको वो समझ नहीं पा रहे। वो तुरंत उमा देवी के चरणों में लेट गए और उन्होंने बोला कि वो जो यक्ष थे वो कौन थे। तब उमा देवी को उन पे दया आ गई और बहुत ही कृपा निधान भाव से वो बोली। तब उमा देवी को उन पर कृपा आ गई और बड़े कृपालु भाव से उन्होंने इंद्रदेव को बताया कि वो यक्ष और कोई नहीं, वो ब्रह्म ही थे। और जब इंद्र को ये पता चला तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने बताया कि तुम्हें युद्ध में जिताने वाली ये ब्रह्म की शक्ति थी, परंतु तुमने असमंजस में और अपने अभिमान में और अपने अभिमान के अंधकार में ये मान लिया कि तुम अपने स्वयं के एफर्ट से, अपने स्वयं की गतिविधियों से, अपने स्वयं के पराक्रम से इस युद्ध को जीते और तुमने अपने अस्तित्व को सबसे ऊपर मान लिया। दोस्तों, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है, ये पूरा ब्रह्मांड एक पराशक्ति द्वारा निर्मित है जिसको हम अपने इष्ट के रूप में, ईश्वर के रूप में, दिव्य ऊर्जा के रूप में देखते हैं, यूनिवर्सल पावर के रूप में देखते हैं और वही क्रिएटर है। अगर आप कुछ भी करते हैं तो एक तरह से आप उस क्रिएटर की शक्ति के साथ एक को क्रिएटर बन जाते हैं। परंतु अपने अभिमान में जब हम ये मानते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो वो शक्ति आपको एहसास दिलाती है कि आप इस संरचना में एक को क्रिएटर है। ये संरचना पूर्ण रूप से आपने नहीं रची। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आप अपने भाव से, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति से वो सब कुछ जागृत कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, परंतु वो किस तरह से फलीभूत होगा, कब फलीभूत होगा, किस रूप में फलीभूत होगा, वो ईश्वर ही डिसाइड करते हैं। वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो संरचना कैसी होगी जहां पर जो आप फलीभूत करना चाहते हैं वो आपके समक्ष आएगा, वो ये क्रिएटिव शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति, वो दैवी शक्ति डिसाइड करती है। परंतु जब हम अपने अभिमान में अंधे हो जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हम ही कर रहे हैं, तो हमारी इंट्यूटिव शक्ति भी कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है और हमारी एनालिसिस पावर भी कम हो जाती है। कई बार कुछ परिस्थितियों में अभिमानवश सत्य हमारे सामने ही होता है, सिचुएशन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, परंतु अभिमान करके एक तम के अंदर चले जाते हैं, एक अंधकार वाली अवस्था में चले जाते हैं जहां हम सत्य को देख नहीं पाते। जब भी आप कोई कार्य करें तो कार्य करने से पहले ईश्वर का आवाहन जरूर करें। जब भी आप कोई कार्य कर चुके हों तो उस कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दें। इसी को कहते हैं कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। इसका ये तात्पर्य नहीं कि आप फल की इच्छा मत करिए, या इसका ये कार्य तात्पर्य नहीं कि आप केवल कर्मों में संलग्न रहें। इसका ये तात्पर्य है कि जब आप कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर की सत्ता को आप जानकर, मानकर और उसे सर्वोच्च सत्ता मानकर आप वो कार्य करें। जब आप कार्य करें तो आप ईश्वर को समर्पित कर दें, तो उससे कहने का मतलब ये होगा कि वो कार्य ईश्वर का ही है। और जब आप वो कार्य ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो वो एक सर्वोच्च भले के लिए होगा। ज्यादा करके उस कार्य का जो रिजल्ट है वो ऐसा आएगा जहां पर जो भी आप कार्य करेंगे वो विन विन सिचुएशन में चला जाएगा, मतलब आपको भी उस कार्य से सफलता मिलेगी और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी उस कार्य से उत्तीर्ण होंगे, खुश होंगे और सफल महसूस करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जब भी आप कोई कार्य करें तो ईश्वर की सत्ता को जरूर अकनॉलेज करें। ये एंटाइटलमेंट अपने आप को ना दें कि आप ही कर्ता धर्ता हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। और एक तरह से ये भी है कि जब आप अपने कार्य को या उसके भार को ईश्वर को सौंप देते हैं, आप अपने कार्य की रिस्पांसिबिलिटी अपने इष्ट को दे देते हैं, अपने ईश्वर को दे देते हैं, तो आपके कंधों पर उस कार्य को करने का जो भार होता है वो और हल्का हो जाता है, वो और सरल हो जाता है। जब भी आप अपने कार्य में अटके तो अपने ईश्वर का आवाहन जरूर करें, ईश्वर को प्रेयर करें, ईश्वर को प्रार्थना करें कि वो इस कार्य की सफलता में भाग लें, वो इस कार्य को सरल करें ताकि वो कार्य इजीली आप कर पाए और उसके रिजल्ट्स भी आपको आसानी से मिले। दोस्तों, जब हम कोई भी कार्यभार को बांट लेते हैं तो वो अपने आप में सरल हो जाता है। और इस ईश्वरीय सत्ता में तो कार्य करने वाले ईश्वर ही हैं, जो फोर्स है पीछे वो ब्रह्म की ही फोर्स है, आप केवल निमित्त बनकर वो कार्य कर रहे हैं। तो जब आप इसी फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक तरह से आप उसको ही पुनः एक्नॉलेज कर लेते हैं। और जैसे ही आप उसको पुनः एक्नॉलेज कर लेते हैं, वो होने वाली चीज और ज्यादा सरल हो जाती है और ज्यादा आसान हो जाती है। हमें एक मैसेज आया है यूएसए ईशा का, वो कह रही हैं कि उन्होंने हमारा वाइब्स वाला पॉडकास्ट सुना व्हाट इज द लॉजिक में और उनको वो बहुत अच्छा लगा। उनको ये लगता था कि वाइब्स जो हैं वो केवल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, इसीलिए लोग कहते हैं कि मुझे वाइब्स मिली, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। परंतु पॉडकास्ट सुनने के बाद वो इस चीज को समझ पाई कि ऑरा की जो शक्ति है, जो वाइब्रेशंस हैं, उनको वाइब्स कहा जाता है, उनको वाइब्स के रूप में रेफर किया जाता है। और इस अवेयरनेस के लिए उन्होंने हमारा बहुत बहुत धन्यवाद किया। यशा जी, हम भी बहुत बहुत आभारी हैं आपके इस मैसेज के लिए और हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं कि हमारे पॉडकास्ट से लगातार लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, उनकी अवेयरनेस और ज्यादा विकसित हो रही है और उनके ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि हो रही है, लगातार उनका लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है या आप हमें अपना ग्रैटिट्यूड या धन्यवाद भेजना चाहते हैं, अपनी अप्रिसिएशन भेजना चाहते हैं, तो प्लीज हमें DM कर सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मैं आपको मिल जाऊंगी डॉक्टर शीशम अग्रवाल के हैंडल पे इंस्टाग्राम पे। रेड FM पॉडकास्ट पेज पर आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पर मैं आपको शीशम बंसल के नाम से मिल जाऊंगी। रेड FM पॉडकास्ट पेज पर आप हमें मैसेज करिए। LinkedIn पर हम मिल जाएंगे, वहां पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और वहां पर जो हमारे लिंक्स हैं उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर जरूर से इन पॉडकास्ट को सुनिए और आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इन लिंक्स को जरूर भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ज्ञान से कनेक्ट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उपनिषद की इम्पोर्टेंस को समझ पाए। वो इस ज्ञान से डरे नहीं, उपनिषदों को ये ना माने, बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है, अपितु हमारा प्रयास ही ये है कि हम इस ज्ञान को बहुत ही सरलतम भाव में आपके समक्ष लेकर आते रहें। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से उपनिषद से जुड़े, यही हमारी अपेक्षा है। और मेरी बहुत सारी बुक्स Amazon पर अवेलेबल है, ओम ब्रह्मांड का नाद इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ओम द साउंड ऑफ यूनिवर्स, मेरी बहुत सारी पोएट्री की बुक्स भी अवेलेबल है, पूर्ण विराम मेरे फिक्रे अंतिम लिखाई, और अभी मेरी एक लेटेस्ट बुक रिलीज हुई है कैसे, और इसका इंग्लिश में जिसका अनुवाद है हाउ के नाम से, आप वो भी ले सकते हैं। तिलक कैसे लगाएं, दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए, स्वास्थ्य किस प्रकार से बनाना चाहिए, एक श्लोक की भागवत क्या होती है, नवग्रहों का उपाय जो लोग कहते हैं और बताते हैं कि बहुत ही पेंसिव रेमेडी है या उपाय है, उसको आप सरलतम भाव में गृहस्थ जीवन में रहकर किस प्रकार से कर सकते हैं, स्वयं अगर आपको रुद्राभिषेक करना हो तो शिववास किस प्रकार से निकालें, अगर आप घर में हवन करना चाहते हैं तो अग्निवास किस प्रकार से खुद कैलकुलेट करके स्वयं ही हवन कर सकते हैं, अगर आप यात्रा कर रही हैं तो कौन सा दिन शुभ है कौन सा नहीं या कौन सा पहर शुभ है, ये सब आप स्वयं खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, तथ्य क्या है, इसको क्यों फॉलो करना चाहिए, लगभग 33 इस प्रकार के रीति रिवाज और उनके पीछे का ज्ञान और उसको किस प्रकार करना है, ये सब इस पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इन पुस्तकों को Amazon से ले सकते हैं और जिस तरह से आपका प्यार हमें मिल रहा है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से बने रहिए हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स। धन्यवाद।
यू आर लिसनिंग टू उपनिषद्स सिंप्लीफाइड by Dr. Shisham Agarwal on the Red Podcast Network.